ओम शांति। हम सब के बीच में उपस्थित हैं ब्राह्मण कुल शिरोमणि, प्यारे बाप दादा का दिल तख्त जीतने वाली मस्तक मणि, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी। हम दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, लगभग 68 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन, चिंतन, मनन कर रहे हैं। आप जन जन को प्यारे बाबा का वर्षा दिलाने के लिए लगभग 60 वर्षों से समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप यूरोप तथा मध्य देशों में ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों के निदेशक हैं। पर्यावरण, महिला उत्थान, धार्मिक संवाद, स्वास्थ्य तथा आत्म कल्याण जैसे विविध विषयों पर वे एक सम्मानित प्रेरक वक्ता हैं एवं ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस के कुशल प्रशासक हैं। आपने विश्व भर में लाखों आत्माओं का प्रभु प्यार से जीवन भरपूर किया है। आप विशेष कठिन से कठिन विषयों पर भी प्रत्येक वर्ग तक प्यारे बाबा की शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए सराहनीय भूमिका निभा रही हैं। जयंती दीदी जी का मानना है कि आध्यात्मिक मूल्यों की गिरावट ही आज की दुनिया के सामने संकटों का मूल कारण है। आदरणीय दीदी जी की विवेकशीलता और करुणा में दिव्य दृष्टि वर्तमान जगत की आत्माओं को स्पष्ट मार्गदर्शना का प्रकाश देती है। आदरणीय दीदी ने सभी आदरणीय दादियों के सानिध्य और पालना प्राप्त की है, लेकिन विशेष परम श्रद्धे दादी जानकी जी का पावन सानिध्य लंबे समय तक आपको प्राप्त है। आदरणीय अव्यक्त बाप दादा से आपको उड़ता फरिश्ता का दिव्य वरदान प्राप्त है, जिससे आप हल्के होकर पूरे विश्व भर में और पूरे भारत में विश्वव्यापी सेवाएं अहर्निश देती रहती हैं। आदरणीय दीदी जी से विनम्र निवेदन है कि वो आज इन होवनहार विष्णु चतुर्भुज आत्माओं को पाप कर्मों को भस्म करने की विधि पर प्रकाश डालें। आदरणीय दीदी जी, गर्व है, गौरव है हमें अपने बीच ऐसी सम्मानित आदरणीय दीदी को पाकर, जो वर्तमान समय हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। हम पुनः जोरदार करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें पाप कर्मों को भस्म करने की विधि पर प्रकाश डालें दीदी जी।
धन्यवाद, इतना प्यार से आपने इतना लंबा परिचय दिया। ओम शांति। आप सब बाबा के विशेष नूरे रतन है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने, जो भी साधु समाज है, जो भी महामंडलेश्वर है, उन सब के ऊपर जीत प्राप्त की है। जिन्होंने कहा कि पवित्रता बहुत कठिन है, वो आप सब सामने सबूत बैठे हैं कि कठिन बात नहीं है। जब परमात्मा की सही पहचान मिलती और उसके याद के द्वारा शक्ति प्राप्त होती, तो फिर तो पवित्रता अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। वो हम सहज सहज अनुभव करके उसको जीवन में धारण करके आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप सब न होते तो बाबा के पास क्या प्रूफ होता इस बात का। विश्व के सामने क्या प्रूफ होता। तो आप सब हो बाबा के राजयोग के टीचिंग्स का, शिक्षाओं का सबूत। तो बहुत सुंदर बात है कि मधुबन के निमंत्रण पर आप सब आए हैं बठी करने के लिए, क्योंकि बाहर में तो कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने में अपने खुद के लिए तो कम ही समय मिलता। न सिर्फ जॉब करनी होती, आजकल तो माताएं जॉब भी करती, घर को भी संभालती, परंतु भाइयों को भी जॉब की भी जिम्मेवारी, कई और जिम्मेवारियां, और बहनों को सब कुछ, घर को संभालना, बच्चों को पालना देना, मित्र संबंधियों के साथ ठीक संबंध रखना, वो कितना बड़ा फैलाव है। और आप यहाँ आए हो तो किस रूप में आए हो? स्टूडेंट लाइफ, और कोई बात का फिक्र नहीं, बस योग किया, ज्ञान किया, नाश्ता किया, फिर योग किया, फिर ज्ञान किया, फिर भोजन किया, फिर योग किया, फिर भोजन किया। तो इसी तरह से जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें जो बाबा कहती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। सचमुच आपको भगवान ने और सब जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी स्टूडेंट लाइफ का बहुत सुंदर अनुभव कराया है। तो आज जो टॉपिक है, आप सोचो कितने जन्मों का हिसाब हमारे सिर पर है, परंतु बाबा फिर भी कहते हैं कि उसका बोझ महसूस नहीं करना है। बोझ तो है ही नहीं, कारण कि बाबा के प्यार में बाबा ने हम बच्चों के बोझ को सब कुछ के लिए कह दिया है, अपना बोझ मेरे को समर्पण कर दो, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं संभालूंगा, आप सिर्फ मुझे याद करो और मेरी श्रीमत पर चलते चलो। तो बाबा इतना मीठा बाबा है जो हर एक को न सिर्फ भविष्य में हमें मुक्ति मिलती, परंतु यहाँ ही इसी जीवन में हर बातों से कैसे फिक्रात से मुक्त हो सके वो बाबा हमें अनुभव कराते। उसमें भी हम फिर भी कहेंगे कि इस एक जन्म में, या तो भी कहें पूरा एक जन्म भी नहीं, कुछ अंश मात्र जो जीवन का और बाकी रहा है, उस एक जन्म के भी अंश मात्र में हमें इतने 63 जन्मों का हिसाब चुकतू करना है। भगवान ही सर्वशक्तिवान है जो हमें इस कार्य में अपना सब कुछ सहयोग दे करके हमें मदद करती हैं कि हम अपनी सत्व प्रधान स्थिति को प्राप्त करें। तो वैसे तो आप सभी को मालूम है कि जब पहले योग अभ्यास शुरू करते तो मन भटकता है, न सिर्फ दिन भर मन भटकता, परंतु योग के समय भी इतना सहज नहीं होता अपने मन को एकाग्र करना। परंतु जो हम मेडिटेशन शब्द कहते हैं, अपना मनन चिंतन और सब तरफ से हटाकर हमें एक बाबा की याद आत्म स्मृति में स्थित होकर के अपने मन को एकाग्र करते। फिर दूसरा स्टेप आता, जबकि हमारा योग बाबा के साथ जुट जाता तो हम बाबा के साथ रू रेहान द्वारा सर्व प्रकार का हम संबंध का रस लेते हैं। यदि हम मनन चिंतन में रू रेहान करते बाबा के साथ ऐसे संबंध नहीं जोड़ते तो कहाँ न कहाँ और हमें कर्म बंधन खींच लेता। परंतु जितना योग लगाएं, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें, उतना ही अनेक और संबंधों से, देह के संबंधों से हम न्यारे होते जाते और बाबा का प्यार का अनुभव होता जाता। कहा ही जाता है न्यारा और फिर प्यारा। ऐसे नहीं कहते हैं कि प्यारा और फिर न्यारा, परंतु न्यारा बन करके बाबा को याद किया तो बाबा ने खूब प्यार दिया। तो सर्व संबंध जितना हम अनुभव करते रहेंगे उतना और सब बातों की झंझट से हम फ्री होते रहेंगे और सहज हमारा योग जुटता जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेज आती जिसमें हम प्रैक्टिकल में ये सब बातों का अनुभव करते हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई। परंतु जैसे ही हमारा बहुत गहराई से बाबा के साथ बिल्कुल कनेक्शन जुट जाता तो हमारी वो स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं बीज रूप स्थिति। और बीज रूप स्थिति में देह तो भूली हुई है, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वो भी सब कुछ भूले हुए हैं। बाकी क्या रहा, मैं आत्मा और शिव बाबा मेरे सामने। और जिस समय वो हम अनुभव करते हैं तो उस समय ये संकल्प नहीं होता, हम विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, परंतु मैं उस गहरे अनुभव में हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, शुद्ध शांत पवित्र स्वरूप। ये सोचना और ये अनुभव करना दो बिल्कुल अलग स्टेज होती, क्योंकि जब कोई बात सोचते हैं तो सोचना अथवा विचार करना वो किस आधार पर होता, अपने दिमाग के आधार पर। तो जिसको ब्रेन कहते हैं या दिमाग कहते हैं वो भी शरीर का एक अंग है, जैसे हमारे दिल जो फिजिकल बॉडी का हार्ट है, आत्मा की दिल अलग है, परंतु शरीर का जो दिल है वो भी शरीर का ही अंग कहेंगे। इसी तरह से ब्रेन भी हम कहेंगे शरीर का अंग है। तो जिस समय हम विचार कर रहे हैं तो उस समय भी आत्मा शरीर के द्वारा ये विचार कर रही है। जैसे आंखें अपना काम करती, मुख अपना काम करता, तो विचार करना भी शरीर के साथ जब आत्मा है तो उसके अंग का हम कहेंगे वो अनुभव है। परंतु जब हम आत्म अनुभव में बैठते हैं जिसको बाबा बीज रूप स्थिति कहते हैं, तो आत्म अनुभव में संकल्प नहीं चल रहे हैं, अंतरिक जाकर के वो हम अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूँ ही आत्मा स्वरूप बीज रूप। और उस समय साइलेंस है, परंतु साइलेंस में भी अनुभव चल रहा है। अनुभव को हम उस घड़ी कुछ लेबल नहीं लगा रहे हैं कि हाँ ये शांति है, परंतु अनुभव जब जैसे मानो कि बहुत आराम से आप नींद कर रहे हो तो उस समय आप ये नहीं सोचेंगे ये अच्छी नींद है, बाद में आप सोचेंगे कि नींद तो बहुत अच्छी नींद थी। इसी तरह से आत्म स्मृति में, आत्मा की स्थिति में हम ये अनुभव कर रहे हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप। और उसमें जबकि बाबा का हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि बाबा शिव बाबा हमारे सामने है, तो उस अनुभव में आत्मा बिल्कुल ही लव में लीन है। जो बाबा चाहते हैं कि हम लवलीन स्थिति का अनुभव करें, वो जब और संकल्प से निवृत्त है, आत्मस्मृति है, उस अनुभव में बाबा के प्यार में हम डूबे हुए हैं और उसी स्थिति को कहेंगे याद की, योग की अग्नि अथवा प्यार की अग्नि। लगन में हम मग्न हैं और उस बीज रूप स्थिति के लिए बाबा ने कहा है सर्व पापों का नाश होता, और उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है हमारे संस्कारों का परिवर्तन हो रहा। जब तक कि हमारे पुराने संस्कारों की उत्पत्ति होती रहती है, चाहे क्रोध है, चाहे क्रोध का कुछ अंश मात्र भी है, मानो कि कभी हम नहीं कहेंगे कि जोश आया परंतु चिड़चिड़ापन हो गया, तो चिड़चिड़ापन कोई आत्मा शांत स्वरूप की स्थिति नहीं है। चिड़चिड़ापन भी वो स्थिति है जिसमें क्रोध का अंश है। या ये हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल मोह से छूट गए, जबकि अभी तक थोड़ी बहुत भी किसी मनुष्य की याद हमें खींचती है, परंतु वो स्थिति जबकि बिल्कुल कोई आत्मा की तरफ लगाव नहीं, झुकाव नहीं, न्यारा और प्यारा संबंध सबके साथ है। तो जब तक कि हम अपने संस्कारों में ये पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं देखते हैं, हाँ जो पहले थे और आज थे अवश्य उसमें फर्क तो है, खुद भी समझ सकते, परंतु दूसरों को भी मुझे सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ इसमें ये परिवर्तन प्रैक्टिकल हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। सर्टिफिकेट सिर्फ खुद को नहीं दिया जाता, हाँ पहले तो खुद को भी देखना होता और उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता, परंतु और भी माने कि हाँ इन्होंने ऐसे पुरुषार्थ किया है जो बिल्कुल आत्मा का परिवर्तन नजर आ रहा है। तो हम ऐसे अपनी स्थिति बनाएं जिसमें जो भी संस्कार हमारे थे, जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि वो तो थी रावण की जायदाद, भगवान की नहीं, भगवान का खजाना तो और कुछ है। तो जबकि रावण के खजाने को हम छोड़ने के लिए तैयार होते, उससे छूटने का पुरुषार्थ होता, तो फिर ये बीज रूप स्थिति जो योग की स्थिति है उसमें पुराना हिसाब किताब भी चुक्त होता, आत्मा स्वच्छ भी बन जाती। तो यदि हमने कभी इस स्थिति का अनुभव किया है तो उसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और यदि हमने अभी तक उस स्थिति का अनुभव नहीं किया है कोई हर्जा नहीं, हम सब पुरुषार्थी है, अभी भी मार्जिन है कि हम अपने संकल्पों को राइट ट्रैक पर चलाएं, ताकि फिर जब हम चाहें दिल को मन शांत हो जाए और हम उस स्थिति का अनुभव करें। पहले तो उसकी कुछ झलक ही नजर आएंगे, कुछ चंद घड़ियों के लिए, एक मिनट, दो मिनट। मैं एक प्रैक्टिकल सीन बताती हूँ, ये है 1967 की बात। मॉनसून का टाइम था, परंतु जैसे आजकल कब बारिश आती है कब नहीं आती है ऐसे खेल चलता। उन दिनों में तो जब बारिश होती थी अच्छी तरह से लगातार 3-4 दिन 5 दिन तक बारिश गिरती ही रहती थी, और फिर कभी कभी सूर्य देवता का दर्शन होता था, बहुत ही मुश्किल से, बाकी तो मॉनसून टाइम था तो हमको विदेश में हॉलीडेज मिलती ही थी जुलाई अगस्त में, तो उन दिनों में हमारा मधुबन आना हुआ और उस समय थोड़े से ही लोग थे क्योंकि पत्थर भी जो गिरते हैं पहाड़ों से, रोड्स भी पक्के नहीं थे जैसे अभी है, बिल्कुल कच्चे रोड थे, पहाड़ का भी रोड सारा कच्चा ही था तो उसमें कई बारी रोड ब्लॉक हो जाता था, तो थोड़े ही लोग थे मधुबन में। और उस समय बाबा ने, आप लोगों ने मुरली में अभी भी सुना आज, बाबा कहते कि आपस में मिल करके राय करो। तो ये 1967 में बाबा ने विशेष दादियों को और बड़े भाइयों को सब तरफ से बुलाया था, एक छोटा सा ग्रुप था जो सेवा के लिए बाबा ने कहा था आप लोग सेमिनार करो, आपस में लेन देन करो। तो मुझे मालूम था कि बाबा को तो सेमिनार में जाना ही है, बाबा ने सवेरे मुरली में बता दिया था कि बच्चे आप लोग शुरू करना फिर मैं बाद में आऊँगा। तो मैं वहाँ पांडव भवन में छोटा सा जो दीवार है बगीचे का उस पर बैठ करके लच्छू दादी ने कुछ काम दिया था बिजी रखने के लिए, बादाम और पिस्ता को स्लाइस करना, तो मैं वो कर रही थी और बाबा अपने कमरे से निकले तो बाबा ने मुझे देख करके ऐसे उंगली से इशारा किया, तो मैं बाबा के पास गई, वहाँ ही छोड़ा चाकू और पिस्ता वगैरह वहीं थले पर छोड़ दिया। तो मैंने सोचा बाबा को कुछ संदेश किसके लिए देना होगा, ऐसे कुछ तो एक सेकंड का काम होगा, परंतु बाबा मेरा हाथ पकड़ के, फिर उस समय सीढ़ी थी सामने जो उन दिनों में शशि बहन के ऑफिस के ऊपर वो बना था नया सारा ब्लॉक, तो बाबा को वहाँ जाना था, सेमिनार की मीटिंग वहाँ हो रही थी, तो बाबा ने हाथ पकड़ के सीढ़ी तक हम पहुँचे। तो मैंने सोचा फिर बाबा और आगे जाएंगे, परंतु बाबा फिर भी मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ले चले। फिर हम कमरे तक पहुँचे तो भी मैंने सोचा कि बाबा अभी मेरे हाथ को छोड़ेंगे, परंतु तो भी बाबा मुझे खींच के अंदर लेके जा रहे थे। तो फिर बाबा अंदर गए और मैं वहाँ थल्ले पर ही बैठी, परंतु बाबा ने ही अंदर कमरे में बुला लिया। तो बाबा, दीदी, दादी और कई दादियाँ, और फिर इस तरफ और जो मुख्य मुख्य भाई हैं अपने जगदीश भाई आदि आदि सब गोल चक्कर में बैठे थे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे क्या कर रहे थे, बाबा को सार में बताओ। तो पहले कुछ और सेवा की बात पर बाबा से चर्चा हुई, फिर दादी जी ने कहा बाबा हम बीज रूप स्थिति की बात कर रहे थे, तो मैंने कल का दिन बहुत ध्यान से अपना चार्ट रखा कि मेरी बीज रूप स्थिति कहाँ तक पहुँची है। तो यह है 1967 की बात, बहुत समय पहले की बात। तो दादी ने कहा कि बाबा मैं सुनाऊं, बाबा ने इशारे से हाँ कहा। फिर दादी बताती कि अमृत वेला तो मेरा बहुत अच्छा रहा, परंतु 45 मिनट्स में मेरा जो बीज रूप स्थिति का अनुभव रहा वो तो शायद 3-4 मिनट ही रहा। फिर मैं मुरली सुन रही थी, तो क्या मुरली सुनते भी बाबा सामने है, बाबा के साथ बिल्कुल मेरा फोकस है, ध्यान है, बाबा क्या मैं उसको भी बीज रूप स्थिति कहेंगी? तो बाबा ने ऐसे इशारा किया, तो दादी ने कहा कि मैंने भी ऐसे ही सोचा, तो मैंने उसका बीज रूप स्थिति में कुछ मार्क नहीं लगाया। और फिर दिन भर जिस समय भोग लगाने के लिए बैठे तो उस समय हाँ तो कुछ चंद घड़ियों के लिए वो बीज रूप स्थिति रही, बाकी तो बाबा के दिल में जो प्यार है, जो बाबा के प्रति थैंक्स है, बाबा इतना हमें पालना दे रहे हैं, भोग लग रहा है, वो अनुभव बहुत सुंदर अनुभव रहा। परंतु बस बीज रूप स्थिति तो शायद एक दो मिनट ही रही। फिर शाम के योग में हाँ उस समय 3-4 मिनट ही बीज रूप स्थिति रही। तो बाबा क्या इसी प्रकार से मुझे चार्ज रखना है? तो बाबा ने बहुत प्यार से बड़ी दादी को दृष्टि दे करके कहा, बच्ची बहुत सच्चाई से आपने अपना बताया है चार्ज, और बाबा जानते हैं कि उस स्थिति को प्राप्त करना कोई सहज नहीं है, परंतु जैसे आपने अभ्यास करके यहाँ तक पहुँची हैं, आप इस अभ्यास को और आगे बढ़ाते रहो। तो कहने का मतलब बीज रूप स्थिति वो स्थिति है जिसमें हमारे पाप दग्ध होते हैं और जिसका प्रूफ होता है संस्कार परिवर्तन। तो जो बाबा के नए नए बच्चे आए हैं वो तो कहेंगे कि हाँ हम अवश्य ही पुरुषार्थ करके ऐसी ही अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएं। परंतु जो बाबा के पुराने बच्चे भी आए हैं वो भी कभी कभी अपने लिए ही सोचते होंगे, मैंने इतने समय से पुरुषार्थ किया है परंतु आज तक भी जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ कि बिल्कुल हर प्रकार से रावण का जो अंश मात्र भी है वो मेरे से बिल्कुल समाप्त हो जाए, और हम देख रहे हैं कि अभी तक पूरी उसकी समाप्ति नहीं हुई है। योग लगा रहे हैं, योग के अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं, परंतु अभी तक संस्कार संपूर्ण रीति से पवित्र अथवा बिल्कुल सत्वप्रधान नहीं बने हैं। इससे लगता है कि जो बाबा हमसे योग की स्थिति चाहता वो शायद हमारी नहीं प्राप्त है। तो कारण ये कि हाँ बाबा के संबंध का अनुभव भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही सुंदर है, हमें अवश्य करना है, परंतु उससे भी हमें ऊंची स्थिति तक पहुंचना है जिसके लिए बाबा कई बार हमें कहते हैं दिन भर अपनी देही अभिमानी स्थिति बनाकर रखेंगे। तो उस देही अभिमानी स्थिति से फिर जिस घड़ी योग में बैठना होगा सहज ही मन और बुद्धि देह से हटकर, इस संसार से हटकर ऊपर के संसार में चली जाएंगी। स्थिति होंगी उस मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने बैठी हूँ, और उस बीज रूप स्थिति में उस योग अग्नि में हमारा हिसाब किताब पूरा ही चुकतू होता जा रहा। बाबा के बच्चे अपनी जब कंप्लेन करते हैं बाबा को, तो बाबा एक तरफ बाबा के बच्चों के सच्चाई को देख करके भी खुश होते हैं कि हाँ बच्चे इतने स्वच्छ हैं, इतने साफ हैं जो बाबा को अपनी बात बता रहे हैं। परंतु बाबा फिर ये भी सोचते कि जो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ बताई है वो जबकि बच्चे उसका अभ्यास करे तो फिर ये उनकी कंप्लेंट मिट सकती। दो बातों का क्या कंप्लेन करते हैं हम खुद अपना ही बाबा के सामने, एक तो बाबा जितना हम योग का अनुभव करने चाहते हैं वो नहीं हो पाता। मैं ठीक कह रही हूँ? बहुत करके सभी बाबा के बच्चे यही कहते हैं ना, जो हम योग की स्थिति का अनुभव करने चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। मैं हाथ नहीं खड़ा कराती, परंतु मुझे लगता है कि आपके आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। और दूसरा फिर हम अपने आप का कंप्लेंट दूसरा बाबा के सामने कौन सा करती हैं? बाबा, अभी तक ये जो मेरा पुराना संस्कार है, स्वभाव है, वो अभी तक क्यों नहीं गया है? तो बाबा तो मुस्कुरा करके जवाब देंगे, बच्चे मैंने तो आप लोगों को बताया है कि क्या करना है, परंतु आप लोग अभी उसका क्यों नहीं अभ्यास करते हो, पुशारत करते हो, ताकि फिर आपको वो सचमुच अनुभव हो सके। तो यदि इस भट्ठी में आकर के आपने इस बात का कुछ पुशारत किया होगा, तो फिर तो सहज सहज मुझे लगता है कि ये दोनों कंप्लेंट्स हमारे मिट सकते, और जो बाबा हमारे द्वारा फिर सेवा कराने चाहते हैं वो सेवा भी हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके नज़दीक के नज़दीक है, मानो कि आपका परिवार है, और दूसरा जो काम पर जाते हैं या कोई समाज में कुछ सेवा करते हैं, तो उनों के संपर्क में भी जो नज़दीक संपर्क वाले हैं, उनों को हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो इतना तैयार नहीं होते हैं सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनों का ध्यान जाता है हमारे चेहरे और चलन पर, वो सिर्फ थियोरी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमारे जीवन को देख करके उससे उनों को कुछ प्रेरणा मिले। आप यदि कहते हो कि भगवान हमें पढ़ाता, या आप यदि कहते हो कि मैं योगी हूँ, योग का अभ्यास करता हूँ, तो फिर वो उसका प्रूफ देखने चाहते हैं। तो यदि आपके चेहरे में वो रूहानी चमक देखे, आपके चलन में वो इतना मिठास देखे, दिव्यता देखे, तो फिर वो भी स्वीकार करेंगे कि हाँ, इसके परिवर्तन से मुझे लगता है कि इन्हों को कुछ परमात्म प्राप्ति हुई है। तो ये भी जो बाबा सेवा हमारे द्वारा कराने चाहता है, वो भी तब होंगी जबकि हमने इतना दिन भर के आत्म स्मृति पर ध्यान रखा, और फिर उसके बाद में हमने उसका बिल्कुल अच्छी तरह से योग अभ्यास किया होगा। आपने ये भी देखा होगा, जिस दिन आत्म स्मृति बार बार खुद को याद, अपने को दिलाया कि मैं कौन हूँ, आत्म स्मृति रही, देही अभिमानी स्थिति रही, तो योग में जब आप बैठते हो दिन भर, तो स्वराज अपने राजा बन के, इंद्रियों का राजा बन, मालिक बन, आपने वो अभ्यास किया, फिर जब योग में बैठने का चांस होगा तो जल्दी ही बुद्धि और सब तरफ से फारग होकर के बाबा की याद में टिक जाएंगे। और यदि दिन भर बेशक कारोबार है तो उसमें बुद्धि व्यस्त रही है, इतनी आत्म स्मृति नहीं रही, तो फिर जिस समय आप योग में बैठेंगे, एक मिनट, दो मिनट, कितना टाइम लगता अपने बुद्धि को शांत करके एकाग्र करना, कुछ मिनट्स तो लग जाते। और जबकि है ही हमारे पास 45 मिनट्स, 30 मिनट, तो उसमें से कुछ समय निकल जाए वो तो हमारा चला गया। तो दिन भर का अभ्यास और ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास, वो बहुत अच्छी रीति से हम ध्यान से करें, तो उसका हम वो अपनी स्थिति बना सकते हैं जिसमें सहज ही फिर जो हम चाहते हैं शक्तिशाली योग, वो हमारा अनुभव होगा। और आप देखेंगे कि एक तरफ तो है हम चाहते हैं कि पूर्व का हिसाब किताब चुकतु हम करें, परंतु दूसरी तरफ यदि हमसे कोई न कोई मुख से कुछ बात निकल आती, कुछ इस तरह से हमारा टाइम फालतू बातों में चला जाता, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हमारे पाप, चाहे हमने कुछ गलत ना भी किया हो, परंतु वो हमारी स्थिति नहीं होती जिसमें हमारी अच्छी तरह से योग ऐसे हो जो पाप दग्ध हो। मानो कि एक तरफ आप शक्ति भर रहे हैं योग के द्वारा और दूसरी तरफ लीकेज हो रही है। जो बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि बाबा देखता है कि कुछ न कुछ लीकेज हो रहा है। दो बातें बाबा ने खास उसमें बताई, संकल्प और समय। तो आप थोड़ा अपना टाइम टेबल पर झांक के देखेंगे ना, तो जो आवश्यक काम है जहां मुझे अपनी बुद्धि देनी ही है तो वो तो बाबा मना नहीं करते, वो तो मुझे एक्यूरेट करनी ही है। एक छोटी सी कहानी दादी गुलजार बताती थी, कहा कि एक माता बस में आती थी पांडव भवन में मुरली सुनने। तो वो माता एक दिन लेट आकर के पहुंची, तो बाद में दादी से मिली और दादी को बताया, दादी मैं तो इतना योग में मस्त थी जो बस स्टॉप पर मेरा ध्यान ही नहीं गया और बस तो मुझे आगे ले चली गई, फिर मुझे ध्यान आया तो फिर मैं वापस लौट के आई, तो इस कारण से मुझे क्लास में आने में देरी हो गई। तो दादी ने उसको क्या कहा होगा? क्या दादी ने उसको शाबाश दिया होगा कि हाँ तुमने इतना अच्छा योग किया जो तुमने अपना बस स्टॉप से ही पास चली गई? नहीं, दादी ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि यदि तुम्हारा योग होता बाबा के साथ तो बिल्कुल तुम्हारा ध्यान भी होता कि मुझे कहाँ पर उतरना है और मुझे और आगे कहाँ जाना है। यदि उस घड़ी तुम्हारी कुछ आंख लग गई, वो दूसरी बात, शायद आपकी थोड़ी आंख लग गई होंगी तो फिर आप थोड़ा आगे चले गए और बाद में पता चला। तो योग के लिए हम ये नहीं कह सकते कि योग के कारण मेरे से कुछ गलत हुआ है, योग तो और ही हमें हर प्रकार से एक्यूरेट बनाता। जब बाबा कहते हैं योग युक्त, मतलब योग में ऐसी स्थिति होती कि बाबा की टचिंग होती कि अब मुझे किस प्रकार से बोलना है, मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना है। एक बारी ये 67 की ही बात है, तो उस समय एक छोटा सा ग्रुप था, वो ये नहीं 67 की नहीं होंगी 68 की, क्योंकि समर के दिन थे, जून मास था। तो एक छोटा सा ग्रुप बैठा हुआ था झोपड़ी में बाबा के बगीचे में, और उसमें एक बहन बता रही थी अपना अनुभव, जो कहा कि वो बाय चांस भी दिल्ली की ही कहानी है, कहा कि मैं पंजाब से आ रही थी मधुबन और मुझे मैसेज मिला था कि तुम पांडव भवन जाकर के कुछ पैकेट लेके आना बाबा के लिए। तो ट्रेन थोड़ी लेट थी और मैंने सोचा कि अभी मैं इतना भाग दौड़ करके वहाँ तक करोल बाग तक जाऊँ ये तो इतना मुश्किल है, तो फिर मैं सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो सीधा ट्रेन पकड़ के ही चले जाती हूँ। मैं पहुँची मधुबन तो ईशु दादी ने पूछा कि तुम ये लेके आई? तो मुझे लज्जा आई, परंतु मुझे बताना था कि मैं तो नहीं लेके आई इस कारण से। तो फिर ईशु दादी ने कहा कि वो अवश्य कुछ दवाइयाँ थी। तो ठीक है, वो तो हो गई बात, परंतु फिर वो बहन कहती कि मैंने रियलाइज किया कि यदि मैं योगयुक्त होती तो मुझे वो ध्यान पर बात रहती कि मुझे ये ज़रूरी काम करना है और मेरी ट्रेन मिस नहीं होती, क्योंकि बाबा का कार्य था। तो कहने का मतलब कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा समय भी न जाए, वेस्ट न जाए, परंतु हमारा संकल्प भी वेस्ट न जाए। आप देखेंगे कि जब युग-युक्त होकर के काम करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा हुआ, फुल स्टॉप, ज़्यादा उसके ऊपर विचार नहीं चलता। यदि कुछ भी थोड़ा सा भी इनएक्यूरेट रहा, हम योग्युक्त नहीं थे, तो थोड़ी नीचे ऊपर बात हो गई, बाद में उसका चिंतन कितना चलता, यदि मैं ऐसे करती तो इतना अच्छा होता, यदि ये होता तो ऐसे नहीं होता, ये सब जो चिंतन चलते हैं, क्योंकि अपना एक्यूरेट कार्य नहीं होता। तो योग्युक्त का मतलब कि ऐसे बाबा के साथ मेरा संबंध जुड़ा रहे जो बाबा मुझे गाइड करता रहे कि हाँ, जो मैं कदम उठा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। तो उसमें मेरी समय की भी बचत हो जाएंगी, परंतु मेरी शक्ति, समय और संकल्प शक्ति की भी बचत होंगी, जो आजकल बाबा की टॉपिक चल रही है कि कोई प्रकार की लीकेज न हो, परंतु और ही हमारा स्टॉक जमा होता जाए, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो, न कि व्यर्थ संकल्पों की लीकेज हो। तो बाबा हमें जो बातें बता रहा है, यदि हम वो पर्सनल उठाएं कि बाबा मुझे ये डायरेक्शन दे रहा है और मुझे ये अपने जीवन में अवश्य करना ही है, यदि हम ये सोचते हैं कि बाबा ने बातें तो बहुत अच्छी की, परंतु हाँ कुछ महारथी है जो ऐसे पुरुषार्थ कर रहे होंगे, तो मैं कौन हूँ? क्या मैं महारथी नहीं हूँ? मैं अपने को कम क्यों समझूं? जो बाबा ने हमें बताया है वो मैं यदि फॉलो करती जाऊँ श्रीमद का हाथ पकड़ के, तो बाबा ज़रूर कहेगा कि हाँ तुम तो महारथी हो। बाबा जिस दृष्टि से हम सबको देखते हैं, हम अपने को भूल जाते हैं कि हम कौन है। एक ही शब्द आप सोचो, ईश्वर की संतान, ईश्वरीय संतान का ही कितना निश्चय और कितना नशा है। मुझे यदि उस स्थिति में हम रहें तो फिर तो कुछ भी मेरा और हिसाब किताब नहीं बनेगा। और पहले हम सोचते थे कि कुछ कर्म किया है तो कुछ हिसाब किताब बना, परंतु आज जिस तरह से समय भागता जा रहा और हमें और सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थ करना होगा, ताकि बिल्कुल हमारी वो संपन्न संपूर्ण स्थिति बने, तो उसमें हमें क्या करना होगा? बिल्कुल हमें ये भी सोचना होगा कि न सिर्फ मेरे वचन और कर्म कुछ व्यर्थ न जाए, परंतु संकल्प भी हमारा कुछ गलत तो छोड़ो, व्यर्थ भी न जाए। अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? जबकि इतने हमारे श्रेष्ठ विचार होंगे, जिन विचारों के द्वारा हम औरों का भी कल्याण कर सके। मनसा सेवा अभी और फरिश्ता स्वरूप जल्दी। तो इन दो बातों को हम ये याद रखें कि मुझे समय और अपने संकल्प शक्ति को बचाना है, तो फिर पाप तो नहीं होगा, ये तो अंडरस्टूड, परंतु और कहाँ पर भी सूक्ष्म में भी हमारा हिसाब किताब नहीं जुटेगा। कुछ समय पहले, शायद 2-3 वर्ष पहले की बात है, एक जनवरी मास चल रहा था और उसमें बाबा के छोटे छोटे कुछ आए हुए थे बाबा के इशारे। तो ये बाबा फरिश्तेपन की स्थिति के लिए बता रहे थे कि बच्चे अभी से ही आप प्रैक्टिस करेंगे फरिश्ता बनने के लिए, तो वो आपकी स्थिति बन सकेंगी। और अंत घड़ी कब आती वो तो भगवान ने ही डेट नहीं बताई है, तो हम तो नहीं बता सकते, परंतु संसार की हालतें तो देख ही रहे हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात है, न सिर्फ भारत की गर्मी परंतु विदेश में अभी फिर से, यूरोप में तो कई स्थानों पर आग लग रही है, अमेरिका में भी कई स्थानों पर आग शुरू हो गई है, और उसमें भी फिर लंदन जैसे स्थान पर जहाँ कभी हम पंखा सोच ही नहीं सकते हैं कि ज़रूरत है, एसी तो छोड़ो पंखा भी हम नहीं रखते थे, तो वहाँ पर अभी 34 डिग्रीज चल रहा है। तो ये तो क्लाइमेट चेंज की रियलिटी है। एनवायरनमेंट का जो नुकसान हो रहा है उसका मनुष्य उसका असर देख रहे हैं। बाबा जो कहते हैं ना कि प्रकृति को भी गुस्सा आ गया है, मनुष्य ने इतना अत्याचार किया है जो वो गुस्सा है प्रकृति को भी, तभी हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। और विश्व के युद्ध की तैयारियां तो आप खुद ही देख रहे हो, सुन रहे हो सारा समाचार। तो ऐसे समय पर मैं फरिश्ता कब बनेंगे, कितना मुझे टाइम चाहिए? एक तो न सिर्फ 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, परंतु अभी भी मेरे संकल्प किसी मनुष्य के तरफ जितने जाएंगे उतना सूक्ष्म वो हिसाब किताब रह जाएगा या तो बढ़ता जाएगा। तो मुझे अपने संकल्पों पर इतना ध्यान रखना है कि जो बाबा कह रहा है क्या वो हमारे संकल्प है। बाबा को कदम कदम कर कलप पहले वाली बात याद आती, जितना बाबा देही अभिमानी स्थिति पर अंडरलाइन करते, बाबा की स्मृति दिलाते, तीसरी बात जो बाबा हर मुरली में याद करते, कलप पहले की बात, ड्रामा की बात। बच्चे कलप पहले भी ऐसे हुआ था, बाबा इतना हमें उमंग देते, इतना हमें नशा चढ़ाते, और फिर भी बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है, कलप पहले माफिक। बाबा अपने तरफ से खूब मेहनत करते, और फिर बाबा को भी साक्षी होकर ड्रामा को देखना होता, और बाबा यही कहते हैं कि जो कलप पहले हुआ है वही अब होंगे हो रहा है। तो बाबा को ड्रामा बिल्कुल पक्का याद है। क्यों? क्योंकि बाबा और ड्रामा कट्ठे कट्ठे चलते हैं। तो क्या मेरी स्थिति ऐसे है जो ड्रामा को साथ साथ में लेकर के चलूं, जिसमें कभी भी मेरे मन में ये प्रश्न ना आए इसने क्यों ऐसे किया, इसने क्यों ऐसे कहा, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, लीकेज जो होती जाती, हमारी शक्ति नहीं भरती जो हम ऊंच उड़कर फरिश्तेपन का अनुभव करें। तो बाबा की जो मुरली में बातें आती है, आप तीन बातें चार बातें हर रोज लेकर के उस पर एक्सपेरिमेंट करो, तो फिर आपके संकल्प की शुद्ध शक्ति भी बढ़ती जाए, परंतु साथ साथ लीकेज बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि शक्ति भरो और साथ साथ लीकेज होती रहे तो क्या होगा। परंतु योग हमारा ऐसे हो जो न सिर्फ उस समय जब योग में बैठें, परंतु दिन भर भी बाबा के ज्ञान की बातों के ही संकल्प चले। दिमाग कहाँ देना है कुछ कारोबार के लिए, दिया, फिनिश, फुल स्टॉप, वो भी योग युक्त होकर के कार्य किया बाबा के इशारे को समझकर, फिर फुल स्टॉप, और फिर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन। आप सोचो मनुष्यों को बाहर में कहाँ साधन ही नहीं है जो उनको अच्छी चीजें सोचने को मिले। जो कुछ चल रहा है, जो मनुष्य का व्यवहार है, जो सोशल मीडिया की बातें हैं, फोन्स है, व्हाट्सएप है, कुछ भी जो है, बुद्धि में क्या भोजन मिलता जा रहा है? फालतू, वेस्ट, बिल्कुल जो बुद्धि को पलूट करता रहे और बिगाड़ता जाए। बुद्धि को ऊंचा उठाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कहां से भी कुछ मटेरियल नहीं मिलता, केवल बाबा और बाबा की मुरली। तो हम बहुत बहुत न सिर्फ सौभाग्यशाली है, न सिर्फ हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, बाबा ने कहा अरब खरब भाग्यशाली है। तो उस स्थिति को याद करके बस बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन, वो खजाना हम अपने पास लेकर के रखें, तो फिर जब आप योग के लिए विशेष बैठेंगे तो बुद्धि सहज और सब तरफ से हटके बाबा का अनुभव और फिर साथ साथ वो बीज रूप स्थिति का अनुभव, जिससे हिसाब किताब चुकतू, ताकि आत्मा बहुत अपने को लाइट महसूस करे, डबल लाइट, फरिश्तेपन का अनुभव और साथ साथ जीवन परिवर्तन का प्रूफ। पवित्रता ऐसी पवित्रता जो बिल्कुल संकल्प मात्र में रावण का कुछ छाया न हो, बिल्कुल एक बाबा की ही स्मृति जिससे अनेक आत्माओं भी बाबा के तरफ खींच के आकर के पहुंचे। तो अब ऐसे योग में बैठेंगे जो बिल्कुल आप ये दो स्टेजेस का अनुभव करो, आत्मा बीज रूप और साथ ही साथ फरिश्तापन। कहते हैं न कि निमय शाम के समय फरिश्ते घूमते हैं सबको सकाश देने के लिए, शांति का अनुभव कराने के लिए। तो फरिश्ते कौन है? बाबा के बच्चे हैं। तो ऐसे योग में बैठें जिससे हम विश्व की भी सेवा कर सके। ओम शांति। शरीर को भी ऐसे बिठाओ जो हिलना झुलना न हो, आराम से भी बैठे परंतु साथ साथ अलर्ट भी बैठे। तीसरा नेत्र खुला हुआ हो, बाबा को ही देखें, बाबा के सिवाय मन में, दिल में, बुद्धि में कोई और नहीं। एक बाबा ही बाबा। मेरा मीठा बाप जो 5000 वर्ष के बाद हमें आकर मिले हैं, ऐसा मीठा बाप जो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर अपने से भी ऊंचा बना रहे। ऐसा बाप फिर मुझे कलब बाद ही मिलेगा। बाबा आप वही हो जो मुझे कलक कलक मिलते, मैं भी वही हूँ आपको जन्म जन्मांतर ढूंढने के बाद आपसे मुलाकात हो रही। यही बाप मेरा शिक्षक, बाबा आपने हर प्रकार के गुह्य राज हमें समझाए हैं, सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की कहानी और किस तरह से फिर से वही जो था अब फिर हो रहा और फिर होगा। भगवान के सिवाय कर्मों की गहन गति कोई और नहीं समझा सकते। आप ही आकर हमें समझा रहे। बाबा आप हमारे सतगुरु, हमें इस संसार से पार अपने घर शांति धाम लेके जा रहे। जैसे आप विदेही आप चुंबक के समान मुझ आत्मा को भी इस संसार के पदार्थ, संसार के संबंध, इस देह से हमें खींचकर इस संसार से पार, चांद सूर्य से भी पार, बेहद के प्रकाश के संसार में आप मुझे लेके जा रहे हैं। ब्रह्म मह तत्व में जहां दूर दूर तक बस ब्रह्म तत्व का प्रकाश ही नजर आता, ऐसी जगह जहां बिल्कुल शांति ही शांति, कोई दीवार नहीं, कोई हद नहीं, कोई अंत नहीं, मैं आत्मा अपनी निज आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ। और परमात्मा के सामने, मीठे बाबा के सामने बाबा द्वारा वो लाइट और माइट मिल रही, प्यार के सागर द्वारा ऐसा प्यार बेअंत प्यार बेहद का प्यार पवित्र शुद्ध प्यार उस सागर में आत्मा समा जाती और इस प्यार में न सिर्फ ये प्यार का सागर परंतु इस प्यार की अग्नि में प्यार ऐसे आत्मा को खींच रहा जो योग अग्नि अथवा प्यार की अग्नि जिसमें आत्मा स्वच्छ बनती जा रही है। अब परम धाम से थोड़ा सा नीचे आते सूक्ष्म वतन तक और वहां बाप दादा खड़े हैं, बाएं पसार के बुला रहे हैं और हमें अपना सूक्ष्म वतन का चमकीला ड्रेस दे रहे हैं। हम वो चमकीला ड्रेस पहनकर अपना एंजल स्वरूप धारण करते और बाबा हमें सैर पर ले जाते। बाबा विश्व को शांति देने के लिए आत्मा में उम्मीद जागृत करने के लिए हमें अपने साथ ले चलते। बाबा अपने एंजल रूप में और हम सब भी बाबा के साथ अपने एंजल ड्रेस में विश्व को शांति का दान, भगवान के प्यार का दान, वो लाइट और माइट बाबा के साथ हम भी सहयोग देते सब तरफ। बाबा हमें घुमाते सृष्टि मंच नीचे है, हम ऊपर में अपने एंजल रूप में बाबा के संग विश्व की सेवा करते। भगवान का काम वही बच्चों का काम, सारे विश्व को वो शांति वो शक्ति वो पवित्रता देने का कार्य। सिर से, सूक्ष्म तन से वापस यात्रा करते परम धाम चमकीला ड्रेस भी वतन में छोड़, आत्मा ज्योति स्वरूप बीज रूप उड़के अपने घर परम धाम में चलती। सतगुरु शिव बाबा वहाँ ही है, ब्रह्मलोक बाप का घर, सुमेरा घर, उस ब्रह्मलोक में मैं और बाप और ये जो प्यार की मुलाकात हो रही, उस सागर पे आत्मा समा जाती। उस प्यार में हमारे पाप धुल जाते, आत्मा स्वच्छ सदो प्रधानता की ओर बढ़ती जा रही। इसी स्थिति में ही रामधाम में आत्मा बाप के साथ बैठ वो मिलन का आनंद लेती और इसको चालू रखती।
ओम शांति।